ಭಗವಂತೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಂದ್ರ ಬದನ್ ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟೇಲ್ ಸೈನಿ ಸಬ್ನೆ ಮಿಲ್ ಕರ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಹೈ ಕಿ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಯೇ ತೀಸರಾ ರವಿವಾರ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ. आज अर्जुन के विषाद योग के माध्यम से कृष्ण ने कैसे विषाद को दूर किया है वह जिक्र विवरण आपके सामने रखूंगा. मूल विषय है कृष्ण पुरुषार्थी हैं कि चमत्कारी. अर्जुन को विषाद क्यों आया? विषाद से जानते हैं हम और आप अपने धर्म को करना चाहते हैं, अंदर से धर्म पालन का विचार आता है. परिस्थिति कुछ ऐसी प्रतिकूल हो जाती है कि हम अच्छा काम करने के प्रति उदासीन हो जाते हैं. जितना सुंदर अनुवाद विषाद का अंग्रेजी में होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी है कंफ्यूजन. और इनसाइक्लोपीडिया उठाकर देखें तो कंफ्यूजन करते हैं विचार करना, फिर संशय आ जाना करूं कि न करूं, करूं कि न करूं. विचार तो अच्छा है, हमें सत्संग में जाना है, विचार है, फिर जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं. अच्छा एक बात होता तो अच्छी बात में जब संशय आ जाता है तो इंसाइक्लोपीडिया में उसे कंफ्यूजन कहा गया. और कर्म के लक्ष्य को रखकर में किसकी मदद मांगने पर कृष्ण मदद के लिए तैयार हुए, लेकिन परिस्थिति देख करके अर्जुन को भागा नहीं, पलायनवादी नहीं बना, लेकिन मन से थक कर हार करके बैठ गया. अब इसी पर देखिए हमारी आपकी हालत भी ऐसी होती है, और इसी बात को जरा अच्छी तरह समझना. मनोविज्ञान कहता है इस धरती पर पुत्र या पुत्री के स्वरूप में हम कहीं भी जन्मे हैं, लेकिन कुदरती हमारे आपके मन में विशालता, विराट का स्वरूप और बहुत आगे बढ़ने का विचार आता है. प्रयास करते हम आप परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा विराट है, परमात्मा किसी सीमा में नहीं. तो विज्ञान क्या कहता है? जो जहां से आया है उसका गुण लेकर आया है. आप गुलाब का फूल हाथ में रखेंगे तो उसमें सुगंध है, सुगंध आपको लगे. अब वो गुलाब का फूल आप गुरु जी को दें, मंदिर में चढ़ाएं, वो आपकी अपनी बात है. लेकिन गुरु जी और मंदिर या कहीं देने से उसकी सुगंध में कमी आने वाली नहीं, वो आपका व्यवहार है. कहां देना कहां नहीं देना. हम और आप परमात्मा के संतान हैं. परमात्मा अखंड, अच्छेद, अभेद, शक्तिमान, बलवान, निरीह, वह गुण हमारे आप में भी आएगा. ये तो व्यवहारिक बात है. शेर का बच्चा शेर ही होगा, बकरी का बकरी, जो जहां से आया उसका गुण लेकर आया. तो आपका जन्म कहीं भी हुआ, लेकिन हम आप जो एक अंश हैं, पूरा का पूरा गुण अंशी, मतलब जहां से आए, परमात्मा का हमारे आप में है. ये वेद भी कहता और विज्ञान भी कहता. आप पढ़ते हैं तो हर बच्चे के मन में है कि गोल्ड मेडल लाऊं, फर्स्ट क्लास लाऊं, ये कुदरत ही आता है। आप इलेक्शन लड़ते हैं तो धार सब बनेंगे, फिर मंत्री बनने की इच्छा होगी, मुख्यमंत्री संतर में, ये कुदरती है, लालच की बात नहीं है। आप 10 रुपए की पगार से नौकरी शुरू करेंगे तो हमारी पगार बढ़नी चाहिए, बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चली जाएंगे। आप कोई भी काम करेंगे लेकिन अंदर की जो विशालता है वो कहते आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ये कुदरती हमारा आपका स्वभाव है। रसिया की एक कहानी और कहानी का आधार भी यही है, हमारी आपकी जो प्रकृति है, जो नेचर है उसी पर है। राजा ने एक व्यक्ति से कहा, एक कल्पना है, इसका स्वरूप मैं बताऊंगा। राजा ने एक व्यक्ति से कहा, सूरज डूबने से पहले हमारे राज में पैदल तू तेज चल करके जितनी परिक्रमा कर लेगा, मेरे पास से यात्रा दौड़ की प्रारंभ कर। सूरज डूबने से पहले मेरे राज में जितनी परिक्रमा करके सूरज डूबने से पहले मेरे पास आ जाएगा उतना तुझे मिल जाएगा। एक काल्पनिक कहानी है लेकिन हमारे आप पर है। वह व्यक्ति कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, राजा के पास आकर दौड़ना शुरू किया और आगे और आगे और आगे। अभी सूरज डूबने में कुछ देर बाकी है तो उसे एक विशाल बगीचा नजर आया। उसने सोचा कि मैं तेज दौड़ता हूं और सूरज डूबने से पहले मैं राजा के पास पहुंच जाऊंगा। काफी तेज दौड़ा लेकिन कहानी कहती है कि राजा तक नहीं पहुंच पाया और सूरज डूब गया, कुछ नहीं मिला। कहानी है, वो सोचा था। अब इस कहानी का स्वभाव बताता हूं। हर अच्छी चीज के प्रति हमारे आपके मन में आकर्षण है, ये कुदरती है, इसमें लालच की बात नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छी बात है, अच्छा भोजन करूं, अच्छा मकान बनाऊं, ये कुदरती है। लेकिन उसके साथ जो विवेक दिया गया, जो कर्म का सिद्धांत दिया गया, वो पशु के साथ नहीं है। उसके मन में विचार आया कि इतना सुंदर बगीचा की परिक्रमा करने के बाद मैं समय से पहले, सूरज डूबने से पहले राज तक पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंच पाया और जो कुछ था वो भी चला गया। अब क्या समझे कहानी के बाद? कहानी के भाव है कि हमारे आपके मन में है, हम बहुत बड़े आदमी बने, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक विवेक डाला गया। बड़े आदमी की जिज्ञासा हर व्यक्ति में है, लेकिन समय संजोग देख करके विवेक का उपयोग करो और उस विवेक का उपयोग करोगे तो सफल हो जाओगे। आप पेपर उठा के देखते हैं या विचार कीजिए, उसमें कोई ऑफिसर भी है, कोई महात्मा भी है, नहीं विवेक उपयोग किया तो जो कुछ था वो भी सब चल। तो ये है कि हमें हमारे आपके अंदर जो एक भावना है वो बड़ी विराट है, लेकिन उसके साथ विवेक रखना। मैं आपके घर पर आया 10 महात्मा लेकर, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया है, तो विवेक से ही उसका उपयोग करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे और आपके साथ एक विवेक हो जाए। अब ये आ जाइए अर्जुन के विचार पर। आप अच्छी तरह गीता पढ़ें, जब तू मेरे पास आया था तो तेरे मन का क्या विचार था? मैंने कहा एक तरफ मैं देना उस समय निर्णय किया, फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा, तूने कहा कि सारथी बनो, फिर कहा किधर चलो। अब यहां पर एक मनोवैज्ञानिक बात समझना, अक्सर लोगों के मुख से आता है कि परमात्मा जो चाहता है वो होता है, लेकिन ये कहानी बड़ी साफ साफ कह रही है कि आप जो चाहते हो परमात्मा उसमें मदद करता है। ये जा समझने के किसको परमात्मा मानिए? आजकल के बच्चे भगवान जो चाहे, भगवान नहीं आप क्या चाहे, इस बात को जान साफ साफ सुन। देखिए पहले निर्णय के बाद ये आपकी हमारी बात है, भगवान तो है एक तरफ कहना रहेगी, एक तरफ मैं तो अपना निर्णय लू। मैं आपसे पूछता हूं आपने क्या निर्णय लिया? और बिना निर्णय के आप कहते भगवान जो चाहेगा होगा, बड़ी जबरदस्त एक मनोवैज्ञानिक बात। अच्छा निर्णय अर्जुन, अर्जुन मतलब हम अर्जुन ने निर्णय लिया परमात्मा का और दुर्योधन ने निर्णय लिया जगत का, सेना का। तो हमारे पास भी दोनों तरह के लोग हैं, एक निर्णय में परमात्मा, एक निर्णय में जगत है। मैं बाद में समन्वय कर दू, अभी इस बात को सुन। दुर्योधन कौन? जिसे परमात्मा नहीं चाहे, जगत है ये दुर्योधन। अर्जुन कौन? जिसे परमात्मा चाहे। ये बात धीरे धीरे समझ, क्योंकि दुर्योधन मन में हंसा जैसा दुनिया है, जैसा इतनी सेना है, ये कैसे क्या करे। अर्जुन प्रसन्न हुआ कि जिधर प्रभु है दुनिया जिनकी माया है, माया मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन फिर भी एक एक बात को समझिए, आपने निर्णय लिया कि परमात्मा हमारे साथ रहे, तो है ही, लेकिन महसूस किए। जो परमात्मा को महसूस करे कि मेरे साथ रहे, मेरे साथ चले, वो अर्जुन। और जो परमात्मा छोड़कर पैसा मेरे साथ रहे, पद मेरे साथ रहे, कोठी मेरे साथ रहे, वो सब दुर्योधन, चाहे वो गेरुआ वस्त्र में हो कि वो किसी में। यहाँ विचार की बात है, पीला काला और सफेद रंग की बात नहीं, वो सब दुर्योधन। इसके बाद देखिए भगवान ने नहीं कहा कि मैं सारथी बनूं, समझो मैं क्या करूं अर्जुन, आप मेरे सारथी बनो। आपने निर्णय लिया कि भगवान मेरे साथ है, ठीक भगवान आ गए, फिर आपने कहा कि आप सारथी बनो, भगवान सारथी बनो। यहाँ भगवान ने कहा कि मुझे सारथी बना, बाद में साफ करता हूँ, पहले समझिए। फिर सारथी बन के कहते मैं किधर चलूं, भगवान ने नहीं कहा कि मैं इधर ले चलूं, या समझो एक एक बात। निर्णय से भगवान हमारे पक्ष में आए, हमने कहा सारथी बनो, सारथी बने। भगवान पूछते मैं किधर चलूं, कहते दोनों सेनाओं के बीच। अब वहां परिस्थिति देख कर अर्जुन को विचार है, क्या विचार है? युद्ध में मैं मारा गया तो जीवन का क्या, इनको सबको मार डाला तो मेरा जीवन का किस पर राज करूं, ये सब बेकार है। एक किसी से ठीक भी है, लेकिन आपको समझाता हूं कि धर्म क्या है। मैं भी युद्ध के खिलाफ, लेकिन वहां जो परिस्थिति है वो धर्म की है। मैं तो हमेशा बड़े बड़े लेक्चर में कहा है, जिस देश में महावीर पैदा हुए, भगवान बुद्ध पैदा हुए, तो बुद्ध के देश में युद्ध की क्या जरूरत है। लेकिन एक परिस्थिति, भगवान कहते हैं तेरा विचार तो तूने कहा दोनों सेनाओं के बीच में लेकर, तो यहां तक तेरे विचार में धर्म पालन का विचार हुआ, अब तेरा विचार क्यों बदल गया? आज तक की बात, आज भी बहुत उदाहरण मेरे पास है, माता पिता किसी तरह से आपको कनाडा भेजते अमेरिका, फिर मैं बोला कि मुझे वापस बुला लो, तो तुम्हारे निर्णय में माता पिता गुरु ने मदद क्या आशीर्वाद दी? हम तो पहले कम से कम, मैं तो पहले कहता हूं हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी बाहर जाते हो तो अच्छी बात है, हम तो पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं, मैं कभी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैंने नहीं कहा कनाडा अमेरिका जाऊं, जितनी जबरदस्त विज्ञान के बाद शक्ति के बाद हमारे देश में कहीं भी नहीं, लेकिन फिर भी कोई जाता है तो मैं आशीर्वाद दे, तो जाओ सीखो आओ वापस आओ अपने देश में। तो आपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, अपने गुरु से आशीर्वाद लिया, और थोड़े दिन में आता है कि यहाँ तो बस ये है ये है, ये परिस्थिति हमारी आपकी, अगर आपको सुनाए सुन के ताजु करो, बिना नाम बताए मैं आपसे कहूँ क्यों किसी का नाम लेना चाहिए, हमारे से बहुत बड़ी पोस्ट पर परेशान हो गए, आए मेरे पास कहे स्वामी जी मेरी इच्छा है किसे ज्वाइन कर दो, मैंने कहा क्या है, कहा कि बहुत परेशान है, आधे रात को मंत्रियों का फोन आता है ये करो वो करो वैसा, तो मैंने कहा था कि क्लास वन ऑफिसर बन, मैं तो आशीर्वाद दिया था क्लास वन, आपने कहा मुझे आईएएस करना, मैंने कहा करो, पहली बार में नहीं आए, मैंने कहा कोई बात नहीं दूसरी बार में आओ, आए फिर आपके पोस्ट से मुझे सब कुछ हुआ, तो आप कुछ बनना चाहते थे उसमें मैंने आशीर्वाद दिया, अब आप कहते हो कि स्वामी बड़ी तकलीफ है, तो पहले ही कहना था कि स्वामी जी मुझे पट्टा वाला करना हुए दिला दो, नहीं सब पढ़ने की क्या जरूरत, आप इतने बड़े हैं तो जिम्मेदारी आ रही है। अब इसी बात को हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये विषाद वाली बात, वो विषाद वाली बात को कंफ्यूजन में लेते हैं, ये आपसे कहता हूं डोंट रिजाइन द ड्यूटी रिजाइन द कंफ्यूजन, मनोवैज्ञानिक कहते हैं ड्यूटी से रिजाइन न करो, कर्तव्य से धर्म से नहीं, लेकिन जो विषाद है जो कंफ्यूज उसको रिजाइन करो, उसी जगह हम उसी को रिजाइन कर दे, मैं भी यही बैठा डोंट रिजाइन द चेयर रिजाइन द कंफ्यूजन द ट्रबल द डिफिकल्टी, अर्जुन कहता है मैं आपकी माला जपूंगा ये करूंगा वो करूँ, कितनी जबरदस्त बात, निराश होकर के भाग करके पलायनवादी बन के तू मेरा नाम लेना चाहता है, ये जबरदस्त निराश, हारे को हरे नाम, जो हार गया उसके लिए हर नाम तो ठीक है डाकू तो नहीं बना, लेकिन समाज के लिए आप हार बन जाओगे। एक बात नहीं तो भगवान कह सकते थे आज पूरा विश्व आप 75-80 साल के ठीक है आप हरिद्वार जाओ आज तक में रहो, लेकिन 25 साल वाला जाके हरिद्वार में रहता है और मुझे मालूम है कि घर से भागा हुआ है, जिम्मेदारी नहीं थी बात, तो फिर वहां जिम्मेदारी क्या निभाओ? तो ये आज के जो फिलासफर हैं जो कहते हैं रिजाइन द कंफ्यूजन डिफिकल्टी, जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त ना करो, मुक्त करो परेशानियों से, ये सब होता है तो एक लो इसे भगवान ने समझाया, तू क्यों भजन करना चाहता है? तो पहले मुझसे कहना था जब मैंने जा समझे जब मैंने कहा कि मैं किधर चलूं, तो उस समय समझ के कहा तुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, कहता ना किसी जंगल में ले चलो कोई महात्मा से मिला दो और आपका भजन करूंगे, क्यों कहा दोनों सेनाओं के आप अमेरिका जाते हैं फिर भागते हैं, आप कनाडा जाते हैं फिर भागते हैं। अभी एक छोटी थोड़े दिन की बात बताओ, थोड़े दिन के बाद समझाया बुझाया जैसे भी किया किया, अपने बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं, दिल के टुकड़े को कर रहे हैं, माउंट आबू भेजा 6 साल के बच्चे, बच्चा रोने लगा, क्या एक माई का वापस आ, डोनेशन दिया ये दिया, फिर बच्चे को समझा के भाई कि तेरे लिए भेजा ये कि आप 6 साल का बच्चा होम सिकनेस हो गए, उस आप गए रोने के लिए, तो आप गए तो रोने लगा तो आपको भी आया ये आया, लेकिन आपने इतना जो खर्च किया इतना तो अनाशक्त बनना पड़ेगा। अनाशक्ति का मतलब नहीं दूसरे को दुख देना, अनाशक्ति मतलब कि किसी के विकास को रोकना नहीं। मैं आपका गुरु हूं, मैं भी आपसे अनाशक्त हूं, अपने शिष्यों को मैं भी प्यार करता हूं, लेकिन आपका विकास रुकना नहीं चाहिए। बस मेरा चेला मेरे सामने रहे, सामने तो रहेगा लेकिन वो करेगा क्या, एक बात बात, मेरा बेटा मेरे सामने सामने तो रहेगा, उसका विकास तो रोकते, हाँ आगे बढ़ते समय जो आए वो आ सकती है अटैचमेंट है, और अटैचमेंट अगर विकास को रोकता है तो उससे मुक्त होना बहुत जरूरी है। मूल बात हमारे सामने कई प्रसंग आए, एक सुंदर बात बताए आ सकती है, किसी ने कह दिया कि बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजोगे, इतना लाख रुपया खर्च होगा, ये होगा वो होगा, आए मेरे पास कहे स्वामी जी, एक मेरा मित्र कहता है कि बच्चे की पढ़ाई पर पैसा खर्च होगा, इतना पैसा तुम बैंक में रख दोगे तो बच्चा कमा करके तुम्हें नहीं देगा जितना बैंक वाला देगा। तो मैंने कहा तुम शादी ही नहीं करते तो बैंक में बहुत पैसा होगा, तुम्हारा बाप नहीं करता तो और पैसा होता, क्या तुम बातें करते, बताइए जिम्मेदारी बाप की क्या है, ये पैसा किस काम आएगा। अगर लड़का है और नालायक निकल गया तो ऑटो रिक्शा चलाते जा डाकू बन गया तो ऐसा, तो लोग किस तरह से मिल सकाएंगे। अब उसे पैसे की आसक्ति आ गई तो जिंदगी बिगड़ जाएगी, इसलिए पैसा आपके विकास में मदद करे, और पैसे के लिए आप किसी के विकास को रोकते हो तो यही आ सकते अटैचमेंट है, और ये फिर राक्षस का गुण हो जाता है। रावण को ज्ञान है सब कुछ है, लेकिन एक चेतन माया में आसक्ति आई और उसी आसक्ति के कारण उसका सत्यानाश हो, धृतराष्ट्र में भी आसक्ति आई, और आज भी जो कुछ आप पेपर में किसी का भी सुन रहे उसके पीछे आसक्ति, चाहे महात्मा जी हो कि कोई आई जी हो कि कोई बदल, सबके पीछे आ सकते, बस इसके बिना मेरा काम नहीं चले। इसलिए हमारे यहाँ आपको बताओ सुन के ताजो करो, बड़े प्यार से कहा था माइंड को कहूँ, मैं आपसे भी कहूँ, गृहस्थ होते हुए अगर वो ब्रह्मचारी नहीं है साथ साथ, गृहस्थ होते हुए शादी करके अगर उसके संतान नहीं है तो उसके घर का पानी नहीं, बड़ी कड़वी बात है, कारण जिनके संतान नहीं होती ना वो दूसरे का खाना पसंद करते, अपना पानी पिलाना भी पसंद नहीं करते, मनोविज्ञान ये आपको बताओ। अगर वो ब्रह्मचारी है साधु उस बात छोड़ी हो, कई जगह मैंने देखा कि शादी कहने के बाद आप मुझे मेरी बात पर थोड़ा एनालिसिस, शादी करने के बाद जिनके यहाँ संतानें नहीं हैं, करोड़ों रुपया होते हुए भी, अब आपको क्या बताऊँ, खाखड़ा खा के जिएंगे और मरेंगे सब छोड़ देंगे, देखा है मैंने, जिनके संतान है। एक थोड़ी सी बड़ी व्यवहारिक बात बताऊँ, मैं जब लंदन में था तो छोटे क्लासेस में प्राइमरी का पगार बहुत होती है, लेकिन 98% शिक्षिकाएं जो हमारी लड़कियां हैं वो टीचर्स उसमें होती है 98%, और बड़ी उम्र और पगार बहुत होती है। जो लोग लंदन से परिचित होंगे वो इस बात को, दे मैं अंडरस्टैंडिंग, और छोटी उम्र वाले ये 2530 वाले ये काले जैसे होते और पगार उनसे थोड़ी कम होती, ये बहुत एक विचित्र बात है। तो मैंने जब अध्ययन किया कि उन्होंने कहा क्या है, तो वहाँ के मैनेजमेंट क्या कर, कहे स्वामी जी पगार इसलिए ज़्यादा देते हैं कि ये प्राइमरी क्लास के बच्चों को शिक्षा अच्छा, और उम्र ज़्यादा इसलिए लगते हैं कि ज़्यादा उम्र वालों में प्यार होता है, कैसे बच्चों को हैंडल करना वो जानते हैं, ये 30 साल वालों को भी बच्चे ही नहीं पैदा हुआ तो बड़े क्रूर होते हैं, इसलिए उनको ऊपर रखता हूँ नीचे नहीं रखता, ये 30 साल वालों के बच्चे हैं ना इसलिए बच्चों का प्यारे ये मालूम ही नहीं, इसलिए इनकी पगार ज़्यादा रखते हैं ताकि लोग नीचे आने में एक करें। अब देख लीजिए और आपको बता दो, जब भीष्म पितामह की बात आई और आप हस्तलिखित महाभारत पढ़िए, किससे पूछा गया कि भीष्म पितामह नारी का सम्मान क्यों नहीं करते, तो बड़े प्यार से कह रहा हूं हस्तलिखित में है, हाथ जोड़ करता जिसे माँ का प्यार नहीं मिला, पिता का नहीं मिला ठीक से और शादी नहीं की, वो प्यार क्या समझेगा, वो अपनी ड्यूटी देगा, प्यार तो नहीं होगा। अब यही बात दूसरे ढंग से देख लीजिए, अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो कुछ लिखा है बहुत सोच समझ के लगा, हमारे साधुओं में है कि जो निसंतान हो गया उनका दान नहीं लेना, वो हॉस्पिटल बना दें स्कूल बना दें लेकिन ये धर्म और मंदिर में वो पैसा नहीं लगाना, मैं किसी जाति पाति की प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे समाज में हमारे देश में इतने पाक पवित्र लोग हैं कि आज भी बैंक के ब्याज का पैसा वो धर्म में नहीं लगाते, कितनी ऊंची बात है लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते। तो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी ऊंची हैं बड़ी अच्छी, अर्जुन है का विषाद केवल अर्जुन का नहीं है, हमारा और आपका, आप एक अच्छे डॉक्टर, आप एक अच्छे इंजीनियर, आप एक अच्छे पिता, एक अच्छे गुरु हैं, तो वेद का एक वाक्य है जो अपने धर्म का पालन करेगा धर्म उसका भी पालन करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी भी रक्षा करेगा भले तभी, और ये महावाक्य को धर्मो रक्षा धर्म है, इस महावाक्य को मैं आपसे कहता हूं तकलीफें आ सकती हैं लेकिन मेरा अनुभव है मैंने देखा है, मैं अपने अगर धर्म पर हूं तो जरूरत पर समय पर सब व्यवस्था हो जाएगी, गलत रास्ते से चलने कोशिश न करो, कैसे जो गए गलत 4 कदम गए लेकिन 15 कदम पीछे आए, गलत रास्ते से आज तक किसी को सफलता नहीं मिली, आपको लगता है कि मैं सफल हो गया लेकिन वो सफलता नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा एक गलत आदमी की बात, पहले भी पहलवान होते थे आज भी है, तो चाणक्य ने लिखा है कि जब तुम गलत रास्ते चलते हो तो तुम्हारा नाम बहुत होता है, तुम्हारी कोठियां बनेंगी, तुम्हारा आश्रम बनेगा, तुम्हारे लोग पूजा करेंगे, लेकिन तुम माया को नहीं समझ पा रहे, पहलवानों वाली बात आज भी है पहले भी थी, चाणक्य ने कहा जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते चलेगा कोई भी उसमें कोई नहीं कोई भी चलेगा और बड़ी इज्जत होगी, वो कर बाल बच्चे भी होंगे, कोठियां भी बनेगी, आश्रम भी बनेगा, लेकिन चाणक्य क्या कहता है, याद रखो ये प्रकृति आपको ऊंचे उठा रही है, आप गलत रास्ते चलकर ऊंचे उठा रही है। आपने कुश्ती में पहलवान को देखा है, बलवान पहलवान पहले कमजोर को दोनों हाथ उठाकर अपने ऊपर ले जाता है और फिर नीचे ऐसा पटकता उठ नहीं पाता। ये प्रकृति भी इतनी बलवान है कि आपकी इज्जत बढ़ाएगी, बच्चे बढ़ाएंगे और ये फिर ऐसी पटकेगी कि कहीं कोई रहने वाला नहीं, सब खत्म हो जाएगी, इज्जत भी खत्म हो जाएगी, कोठी भी खत्म हो जाएगी, उसका जेल में जाने की दौलत आएगी। ये जा विचार करो ऋषि मुनि। अब वही देखिए, चाहे रावण की बात करो, चाहे कंस की करो, चाहे दुर्योधन करो, तो विचार आप एक अच्छे हैं, खूब पैसा कमाओ, मैं हम पक्ष में हूं, खूब कोठी बनाओ, लेकिन किसी की नकल करके नहीं, किसी को धोखाधड़ी देके नहीं, अपने बल पर, अपने कर्तव्य के पालन में, अपनी ड्यूटी पर। सारा जगत आपके आरती उतारने उतारने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को होम करना पड़ेगा। जीवन में सफलता बड़ी सरलता से नहीं मिलती, एक एक कदम करके आपको पहाड़ पे जाना है तो बड़ी मेहनत कर, और जिसे नीचे उतरना है, पहली बार 62 में मैं गिरनार गया, समय साथ 4-5 महात्मा थे, थोड़े बीच में थके रुके गए, तो हमें कमंडल कुल जो लोग गए होंगे, सबसे ऊपर कमंडल कुंड है, उसके आगे फिर दत्तपाद का है, लास्ट में रुकने कमंडल कुंड है ना, कमंडल कुंड जो गए होंगे महात्माओं का स्थान है, तो कमंडल कुंड तक पहुंचने में हमें कई घंटे लग गए, रात्रि में वहां निवास किए, इसके बाद दत्त पादुका गए, दत्त पादुका के दर्शन करके आए, वहां भोजन वगैरह किए, तो जो लोग गए होंगे तो नीचे से तलेटी से कमंडल कुल पहुंचने में बहुत टाइम लगा, लेकिन जब उतरने लगे तो सब 1.5 घंटे में, एक दिन नहीं लगे, तो चढ़ाई में बहुत समय लगता है। आप अपनी कोठी बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, शायद 3 साल लगे, आग लगाकर खाक करने में क्या लगता है, 10 मिनट काफी है। आपके ढोलों का तबला फटेगा तो 1 घंटे में कोई ना कोई ठीक कर दे, लेकिन जिंदगी फट गई तो 1 घंटे में नहीं ठीक, शायद दूसरा जन्म लेना पड़ेगा कुछ पैसों के लिए, कुछ लालच के कारण जिंदगी हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कुछ होने वाला है, हमारे पहले भी जो गलत किए उनका सत्यानाश हुआ तो हमारा क्या हुआ, इसलिए चाणक्य बार बार कहता है, तुम जिस रास्ते चल रहे हो तुम्हारे पहले भी लोग चले, सुख पर भी चले, अशुभ पर भी चले, सुख पर चल करके पूजा हुई, अशुभ पर चल के विनाश हुआ, अगर तुम अंदर समझते हो कि मेरा रास्ता गलत है तो तुम्हारा परिणाम अशुभ का विनाश आएगा, सोचो इसकी तैयारी करो। आप सब पढ़े लिखे हैं, 20 साल पहले की बात, पंजाब का प्रधानमंत्री तनाका, उसके एक पुस्तक है 30-32 पेज की, जब वो जेल में गया तो जेल में बैठ के लिखा, मूल बात यही लिखा कि गलत रास्ते से चलते चलते मैं प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन मैं जानता था कि अंतिम पड़ाव जेल है, इसलिए आज मैं जेल में हूं तो मुझे कोई दुख है दुख नहीं। तनाका 20 साल पहले की बात, मैंने पढ़ा पुस्तक, उसमें मूल बातें, गलत रास्ते मुझे सफलता मिली लेकिन मैं जानता था कि मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव जेल, और मैं जापान गया हूँ, आप जापान की जेल इतनी कठिन है कि बड़ी मुश्किल, इतना है आपको बता दूँ, चाहे मनीषानंद हो कि प्राइम मिनिस्टर हो, जो गलती करेगी जब जेल में जाएगा तो आप पूरी तरह सो नहीं सकते, और बुरा मानिए वहीं टट्टी वहीं पे साफ वहीं भोजन, और दूसरे दिन कोई साफ करने आएगा, बाकी वो साफ भी, इसलिए सबसे कठिन, मैं कहता जेल ऐसी होनी चाहिए जहाँ, यहाँ तो इतनी सुविधा मिलती है कि मुझे जेलर कहता है महाराज जी बदमाश कहते हैं साहब किसी केस में रख दो, कम से कम 2 टाइम तो ठीक से रोटी मिलती है, बात वो भी नहीं है ना, हमारे परिचित जेलर हो गए, एक बात कर, ये तो कठिन, जब हमारा एक समय था हाथ काट दो, गलत काट दो, सिर काट दो, तो कितनी अच्छी बात थी। अभी इतनी सरलता हो गई कि क्या बताऊं मैं इस पक्ष में कि न्याय, जहां न्याय की बात है चाहे कोई भी हो, न्याय के साथ कोई समझौता न करो तभी ये समाज सुधरेगा, चाहे कुछ भी हो, कितने सरल बन जाओ कितने हो जाए लोग नए लाभ लेंगे, पहले भी लिया आज भी ले रहे। तो आप सब अच्छे हैं, विषाद का क्या भागना नहीं, अर्जुन भागा नहीं, कर्म करने से इनकार कर दिया, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं। कई बार आप भी कहते मैं नहीं पढ़ूंगा, अरे कितने प्रमोशन लेने के लिए तैयार नहीं, मेरे ही से महाराज प्रमोशन क्या है, 500 रुपया ज्यादा बढ़ेगा परेशानी है। मैंने कहा कमाल की बात, भाग नहीं रहे, मैं वहीं रहूंगा, वहीं बैठूंगा, तो बेकार बैठेगा, क्या करेगा, तो कंफ्यूजन कैसा है, इसके भी जब नहीं है, प्लान बात नहीं है, काम को नहीं करना। आप मनोविज्ञान है, अगर काम करने में दो तकलीफ है तो काम छोड़ने के बाद 200 तकलीफ हो जाएगी। मैं अपनी पुत्रियों से बेटियों से भी कहूंगा, सास ससुर के साथ रहने में अगर दो तकलीफ है तो इनसे अलग होने पर 100 तकलीफ हो जाएगी। आपको मैं बता, बाप के पास रहने से अगर दो तकलीफ है तो बाप से दूर होकर के हजारों तकलीफ हो जाए। गुरु की आज्ञा पालन करने में शायद दो तकलीफ होगी, लेकिन जब पालन नहीं करोगे तो हजारों तकलीफ है अपने आप बिना आमंत्रण के आ जाए। एक बात, माता पिता गुरु की डांट सहन करोगे तो अफसर बनकर डांटने लायक बनोगे, और माता पिता गुरु की डांट से बुरा मानोगे तो पट्टा वाला बन करके सारी जिंदगी डांट खाने। हमारी डांट में, माता पिता गुरु की डांट में कुछ है रहस्य, हम आपके दुश्मन नहीं है, हमारी नीतियां करती, इसलिए अर्जुन भागा नहीं है, काम को छोड़ दिया, मैं नहीं युद्ध करूं। अब देख लीजिए भगवान ने किस तरह समझाए, समझो तू काम छोड़ रहा है। वहां पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, तू श्वास तो ले रहा है, अच्छा बता श्वास लेना कर्म है कि नहीं, बड़ी सुंदर, श्वास लेना कर्म है कि नहीं, हाँ हाँ कर्म है, तो तू कहता मैं कर्म नहीं करूंगा तो श्वास भी लेना बंद कर दूं, कोई पूछेगा ही नहीं। देखना कर्म है, सुनना कर्म है, अर्थात बड़े प्यार से कहता हूं, किसने नहीं कहा लेकिन फिलासफर कहते हैं, आंख रहते हम कहते मैं नहीं देखूंगा नहीं करूंगा, दिमाग रहते मैं नहीं पढ़ूंगा, जीवा रहते मैं अच्छा अच्छी बात नहीं बोलूंगा, श्वास रहते भी हम अच्छा नहीं सोचेंगे, इसके बजाय तो मर जाना अच्छा है, लेकिन ये आदमी बड़ा खतरनाक है। आप सांस ले रहे हैं और कर्म से भाग, तो श्वास भी तो कर्म है, श्वास लेना बंद कर, देखना बंद कर, सुनना भी कर्म है। हमारे यहाँ कहानी आती, बेटा कुछ मेहमान आए इनको पानी पिला दे, अरे गुरु जी अपने आप के लिए, बेटा इनको कुर्सी दे दे, अरे वो तो अच्छे है अपने आप ले, बेटा 12 बज गए आप भोजन के लिए, कहा गुरु जी कम से कम तीसरी बात तो आपके माननी चाहिए, दो तो जब भोजन की बात आई उपकरण का देखा कितना जगाया नहीं जागा, लेकिन जब अच्छे भोजन की सुगंध आई तब बाकी नगाड़ा बजा गया, हाथी से बुलवा गया नहीं, लेकिन जब सुगंध आई जसवाल साहब, तो आज हम लोग भी सुगंध देखते ही जागे, कुंभकर्ण की औलाद है आप, अरे मैं भी उसे जरा विचार करो, बच्चों से कहूं केमिस्ट्री पढ़ो तो कहते महाराज नींद आ जाती है, और मैं किसी का अपमान नहीं करता लेकिन मैं कहा तू मुंबई से कोई नाचने वाला आया तो आधी रात को जाके बैठा रहा है, एक बात है। तो जो अच्छी बात है उसे कल्टीवेट करना, और वो हमारा स्वभाव है। ये प्रकृति की बात बताएं, वो आपकी बात हो सकती है, मेरी बात, हमारे बच्चे हैं कि हमारे से हैं, मेरे सामने भी आता है, आपके सामने भी आता है, गुरु महाराज जी भगवान की कसम, आप कसम तो खाते वायु के गुण, हमने शंका की और आप कसम खाए, क्यों खा रहे हैं कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे गुरु मेरा विश्वास करें। अब देखिए मनोविज्ञान, हमारा बेटा है कि हमारी बेटी है कि हमारा चेला है, सब में मुझे शंका हुई कि ये झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने वाला चेला भी जब शंका होती है, गुरु जी मेरी बात को झूठ मान रहे हैं, तो अपनी झूठ बात को सच कराने के लिए वो कसम खाता है कि गुरु जी मेरी बात को झूठ न माने, गुरु जी मेरी बात को झूठ न माने, अर्थात कदर सच की हुई ना, भले झूठ बोल रहा है लेकिन कदर, तो सीधे सच क्यों नहीं बोलते, मैं बहुत बेईमान आदमी हूं, सारी दुनिया 420 करता हूं, जेब काटता हूं, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा मेरी जेब काटेगा थप्पड़ मारोगे, इसका मतलब जेब काटना बुरा है लेकिन दूसरे की नहीं, अपनी जब काटे तब बुरा, इसका मतलब जेब काटना तो बुरा है ही। मेरे बच्चे ने बिना मेरे पूछे, मेरे बेटे ने मेरे पॉकेट में से पैसा निकाल लिया तो कितना बुरा लगता है, तो आप जब दूसरे के पॉकेट जो है बिना पूछे निकाल लेते हैं तो क्यों नहीं बुरा। एक बात है, हमारी कोई निंदा करे तो बुरा लगता है, तो आप दूसरे के आत्मसर्व होते हैं, तो विषाद का क्या अर्थ है। जो कर्म करते समय चाहे मोह है, चाहे लोभ है, चाहे क्रोध है, चाहे अहंकार की आसक्ति है, लक्ष्य की प्राप्ति में जो चीजें बाधाएं डाल रही हैं, समझ करके उनको दूर रखना, उनसे दूर होना, ये जीवन की सफलता। एक छोटी सी कहानी है कि आसक्ति आदमी कहां से कहां ले जाती और कहां तक पहुंचा देती। पहले वो रसी का कहानी सुना था, इतना सब कुछ होने के बाद थोड़े से बगीचे के लिए आसक्ति में नहीं पहुंच पाए लक्ष्य तक। ये पूरी दुनिया जानती है लेकिन मैं आपको इशारा करूं, हमने वर्ल्ड कप जीता उस समय कपिल देव कहते, लेकिन उस समय मैं गुरु हूं मेरा इशारा समझिए, कपिल देव के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वहां बिना वस्त्र के फील्ड में एक लड़की दौड़ी, लेकिन कपिल देव देखा भी नहीं, वो जीत गया वो वर्ल्ड कप। ये तो सारी दुनिया जानती, और एक क्षण के लिए देखता तो बड़ा, एक क्षण की भूल हार में बदल जाती, ये हम आप भी एक क्षण की गलती करते, उस क्षण को नहीं संभाल पाते, उसका कुछ हो जाता है। एक बार मैं आसक्ति पर बोल रहा था, कहना सक अपने को डिटेच करो, तो एक पढ़े लिखे गेल ने कहा स्वामी जी प्रवचन बहुत अच्छा रहा, आप कहते हो कि भाई अनासक्त बनो तो फिर भगवान में आसक्ति लगाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा छोटी छोटी आधे जगत एक छोटा, छोटी आसक्ति इसलिए कि जिंदगी ना खराब करो, और भगवान में आसक्त इसलिए करता हूँ कि पूरा जगत आपको हो जाएगा पता नहीं चलेगा, तो पूरा जगत अपना बनाना चाहते हो तो भगवान में आसक्ति रखो, और थोड़ा ही अगर करना चाहते हो तो फिर कल कहा ठीक है, कबीर ने भी कहा अगर तुम भगवान को अपना बना लो तो पूरा विश्व तुम्हारा है, कोई अलग ही नहीं, वही बात मैं कहता हूं, आसक्ति छोटी छोटी बात। आपको एक बड़ी सुंदर बात बताएं, बड़ी सुंदर बात। 15-16 साल पहले की बात है, शिष्यों को लेकर के किसी तीर्थ स्थान पर मैं गया, तो वहां पर जहां रात रहा उन्होंने सुबह मुझे सब बिल बताया। मैंने अपने शिष्यों से कहा था कि भाई इनको 1001 रुपया दे देना, बिल तो आया 650। मैंने कहा बिल दिया तो बिल के हिसाब से दो। तो मैंने कहा महाराज जी हम तो 1001 दे रहे थे, बिल में तो मेरा फायदा हो गया। आपको लगा शायद मनीषा को फकीर नहीं देगा, अरे फकीर जितना देते उतना कोई हमें क्या आ सकती है। एक बात रहा, और वही फकीरों में जब आसक्ति आ गई तो सत्यानाश भी हुआ, किसी का भी। तो मेरे प्रिय आत्मन, अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा में, अपने धर्म में, अपने देश में आसक्त बनो। कुछ ऐसी चीजों में आसक्त ना बनो कि आपका सत्यानाश हो जाए, कि आप विवेक दो, आपके धर्म का सत्यानाश हो जाए, आपके देश का सत्यानाश हो जाए। एक बात कहा, इसलिए विषाद का अर्थ है कर्म करते समय किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, मैं नहीं करूंगा, इसमें परेशानी है। और कर्म करने में अगर दो परेशानी है तो कर्म छोड़ने से हजारों परेशानी है। एक हंसी की बात सुनाए आपको, हंसी की बात। कोई अच्छे सिद्ध संत के पास कोई आया, कई कहानी है सब समझ जाए, महाराज जी भगवान इतना पैसा दिया कि मैं दुखी हूं, ठीक से नहीं होगा। दूसरा आता, महाराज पैसा नहीं हूं इसलिए दुखी हूं, एक कहानी है। फिर एक आता, महाराज जी शादी करके दुखी हूं, एक आता कि नहीं शादी हुई इसलिए दुखी हूं। और इसी पर शायद हमारे गुरु महाराज ने कह दिया होगा कि नानक दुखिया सब संसार सुखिया सो जुड़ना। कहे महाराज आप कुछ उत्तर दीजिए, ये पैसे वाला भी दुखी, जिसके पास नहीं वो भी दुखी, शादी करने वाला भी दुखी, जो शादी नहीं किया वो भी दुखी। कहा दुख का कारण न शादी है न पैसा है, दुख का कारण है आसक्ति। समझकर विवेक से इनका उपयोग करो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस जगत में काबिल बनाया, बच्चों काबिल बना। और एक मनोवैज्ञानिक बात है भाई, जिनकी शादी नहीं हुई वो दुखी हैं, तो शादी करके दुख मोल लेकर एक अच्छी संतान को समाज को दे दो, नहीं तो तुम्हारे पास हम तुम्हारे हाथ करें, तो शादी करके दुखी होना ठीक है, कम से कम एक संतान को अच्छे दोगे। एक बात कर, तो ये एक विचार, दुख का कारण पत्नी नहीं है, दुख का कारण बच्चे नहीं है, दुख का कारण कोठी नहीं है, दुख का कारण आसक्ति। दुख का कारण कपड़ा नहीं है। आपको बताता हूं, एक हंसी की बात सुना दो, नदी किनारे कोई नहा रहा है, हवा आई कपड़ा चला गया, वो खुश हो गया, गांव में आकर के मिठाई बांटने लगा। कहते भाई किस खुशी में मिठाई बांट रहे? कहा नदी में नहाने गया था, कपड़ा किनारे था, हवा आई, कपड़ा पानी में बह गया, अच्छा हुआ कपड़े मैं पहने नहीं था, नहीं तो मैं भी बह जाता, मैं भी बह जाता। अच्छी बात, अब किसी बुद्धिमान ने बदल दिया कि चल कपड़ा पहन के देखो, अरे मेरा कपड़ा भी गया और 4 किलो मिठाई भी। अब कपड़े में आसक्ति आ गई, पहले तो यह हुआ कि मैं बच गया, और फिर आसक्ति आई कि मेरा। और विवेकानंद की बात हो, मैं कहता लाखों रुपया चला जाए, 2-4 दिन पहले की बात है, कोई आए अच्छे आदमी आए, तो रोजे थोड़ी बहुत। मैंने कहा बिहार का इतिहास देखा, आप बिहार में तो नहीं थे, बच्चे हो ना, क्यों रो रहे हो? काबर स्वामी ठीक है, अरे आप बच्चे तो गया, लाख 2 लाख हो तो फिर कमा लोगे। वाकई विवेकानंद कहते हैं तुम्हारे अंगूठे की, वो बड़े लोगों का, तुम्हारे उंगली में हीरे की अंगूठी अगर चली जाए, उंगली में हीरे की अंगूठी चली जाए, चिंता न करो, फिर बना, लेकिन कभी गलती से अगर उंगली चली गई तो कहां से लाओगे? अरे आप हैं सब हो जाए, गया कपड़ा गया तो फिर आ जाएगा, 10-20-50 रुपया गया फिर आ जाएगा। एक बात तो आसक्ति जो हम कहते हैं परमात्मा में करो, धर्म में करो, इससे आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन गलत आसक्ति, जगत की आसक्ति में धर्म छोड़ जाता है, परमात्मा छोड़ जाता है। जैसे दुर्योधन सेना को पा करके बड़ा खुश हुआ और देख लीजिए सब चला गया। कृष्ण में आसक्ति रख करके और अपने धर्म का पालन किया, ठीक है। तो अनासक्ति का क्या मतलब? भगवान को छोड़ना, माँ बाप को छोड़ना, अपने को छोड़ना नहीं। कर्तव्य पालन करते समय जो चीजें विकास में हर्डल पैदा करें, विघ्न पैदा, समझ पूर्वक उनका त्याग करना। और जब इस तरह से हमारे भगवान कृष्ण ने अर्जुन समझाया, कर्म का त्याग नहीं कोई कर सकता। माता पिता के कर्म के संघर्ष से ही हमारा हुआ, बड़ी जबरदस्त बात है। हमारे माता पिता स्वस्थ थे, उनके मिलन से मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुआ। इसलिए बिना संघर्ष के, बिना शक्ति के, शक्ति का भी जन्म होने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी शक्ति की प्राप्ति के लिए जो चीजें हमारी जीवन को विनाश में डाल रही, पतन उनका त्याग करो। वेद उठा के देखिए, कुछ नहीं कहा, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं। आप देखिए, आप सुनिए, आप बोलिए, लेकिन आपका विकास नहीं रुकना चाहिए। आप खाइए, यथा दीनम ध्यान पद में सत्य की बात क्या है, फैक्ट क्या है, सत्य क्या है, सत्य को समझो, सत्य को समझो। सत्य है आपके जीवन का विकास। ये नहीं कहा गया दूध पीने से आपका विकास होता है तो स्वीकार करो, और नहीं होता है तो समझ के त्याग करो। मेरे पास आने से, मुझे देखने से, सुनने से मेरी बात तो विकास होता है, तो आओ, लेकिन मुझसे घृणा न करो। शायद आपके लिए जरूरी नहीं, किसी और के लिए जरूरी हो। घृणा सब तो जीवन में आना ही नहीं चाहिए, हमें नहीं जरूरत है, बात खत्म करो। आप नदी किनारे तपस्या कर रहे हैं, अगर आध्यात्मिक शक्ति का जागरण हो रहा है तो ठीक है, नहीं नदी को बुरा नहीं लगेगा। समझ करके नदी से किनारे से ऊपर आओ, जहां ठीक वहां तो पीछा करो, कोई कहीं बुरा लगने वाला नहीं। हमें किसी के प्रति मन में घृणा नहीं लानी, लेकिन हमें जरूरत नहीं। खुद विज्ञान कहता है कितना, मैं डूंगरी नहीं खाता, मत खाओ। लेकिन घृणा करके अपने मन को इतना खराब क्यों कर रहे, मत खाओ। डूंगरी देख करके आप इतने कमजोर हो गए तो क्या जीत पाओ? खाने वाले को जो डूंगरी खा रहा है उसको दुख नहीं, और देखने वाले को दुख है, कितने कमजोर हो। ये आपकी कमजोरी की निशानी है, त्याग की निशानी नहीं है, ये मनोविज्ञान। इसलिए सुनो देखो, लेकिन कोई चीज सुनकर देख करके कमजोर न बनो, उसमें आसक्त न हो जाओ। जो खाने से अच्छा थोड़ा हो, थोड़ा हो। ए भोजन की बात बताए, अच्छे अच्छे लोगों में देखा है कोई अच्छी चीज है? मैं कहता हूं चाचा जी थोड़ा ले लो, भाई साहब थोड़ा ले लो, काका जी ले लो, माता जी ले लो। अच्छा तो गुरु महाराज जी आप कहते थोड़ा ले, गुरु महाराज के सारे पर खाने की लालच से ज्यादा लेते हैं, गुरु महाराज तो पूछेंगे, पूछेंगे। और बाद में कहते महाराज जी कोई भाई डॉक्टर है पास में, थोड़ा ज्यादा हो गए। इसलिए हमारे यहाँ कारण कहता है कि जब आप भोज में जाओ तो पहले पता लगा लो कि वहाँ कोई डॉक्टर वैद्य है कि नहीं, और पता चले भोजन अच्छा है तो थोड़ी दवा घर से लेके जाओ। ये तो बात है। अरे मेरा काम है पूछना, मेरे गुरु हूँ, लेकिन कितना खाना कितना नहीं खाना वो आप करता। आप कभी भी आते, मैं कहता भोजन करो। एक बार किसी ने कहा स्वामी जी आप पूछते हो इसलिए करता हूँ, मैंने कहा मेरी कल्चर है पूछने, लेकिन ना बोलने के भी कल्चर आपकी, आप बोलो कि नहीं। एक बार कोई बात हुई, मैंने कहा भोजन करोगे, कहिए बोल। कहे महाराज मैं तो खा के आया था, और आपने कहा मेरी संस्कृति है पूछना, तुम्हें कहना था कि मैं खा के आता हूँ, मैं जबरदस्ती थोड़े खिलाते। तो मैंने कहा दूंगी 11 रुपया तक छोड़ा ताकि वो पचा लो। इसलिए हमारे साधुओं में घंटे की बात, साधुओं में हम आपके यहाँ जब आते हैं दक्षिणा क्यों लेते हैं, आप लोग अच्छा बनाते हो, ज्यादा खा लूँ तो घर का पैसा ना जाए, इसलिए दक्षिणा में से ही वैद्य को देकर के दवाई ले लो। भोजन आपका और वैद्य का हिसाब किताब भी आप, इसलिए 11 रुपया ले लो हमारे साधु लोग। एक बात तो मेरे प्रिय आत्मन, अभी कृष्ण का विषय चलेगा, डॉक्टर पटेल ने कहा स्वामी जी संडे को भी साथ योग पर जा बताइए, अभी कृष्ण चलेंगे, अभी बहुत कुछ बता। फिर से हम सब अर्जुन हैं, मतलब अच्छे हैं, अर्जुन नाम की बात नहीं है, जो भी मेरा नाम है अर्जुन, अच्छे काम के लिए भगवान ने भेजा हमें, बुराइयों को नष्ट करना होगा, लेकिन उसके पहले अपनी बुराई, हमें मोह को नष्ट करना पड़ेगा, जो मोह हमारा सत्यानाश, चाहे वो देखने का मोह है, सुनने का मोह है, बोलने का मोह है कि खाने का मोह है, हमें क्रोध को नष्ट करना पड़ेगा जो हमारा सत्यानाश कर रहा है, हमें दो बना दिया, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर का आदमी अलग हो गया, अभिव्यक्ति अलग हो गई। अचानक जब आपके घर में पहुंचता हूं तो पति पत्नी लड़ते मुझे देखते परम संत बन जाते, मैंने कहा वाह। एक किस्सा सुना दूं, मैं जल्दी किसी घर क्यों नहीं जाता, 25-30 साल पहले की बात, अचानक सुबह सुबह पहुंचा तो कोई बात और बच्चों के लेकर पति पत्नी में लड़ाई थी, तो पति का मुंह इधर था, पत्नी के इधर था, दरवाजे की तरफ मैं गया तो पत्नी कहते गुरु, अरे बीच में क्या गुरु महाराज, गलती तेरी है गुरु महाराज, गुरु महाराज को ठीक है, कहा पीछे गुरु, क्या पीछे गुरु महाराज, मैंने कहा नाम लिया, मैंने कहा क्यों आ गए, अरे अरे महाराज एक मिनट में ऐसे ही परम संत हो गए तो महाराज भी थोड़ा वाह। तो मैंने कहा मेरी फोटो क्यों रखे उतार के फ्रेंड, हाँ तो बात एक मिनट, एक बात हो जाए जो साथ साथ है ना, थोड़ा बहुत समझो उसमें क्या है, क्या होता है क्रोध किस काम है, इस काम तो विषाद का क्या मतलब, मैं नहीं कहता हूं कि अच्छा है क्या बुरा है, आपके पास विवेक, आपका विकास रुकना नहीं चाहिए। मैं भरूच जा रहा बीच में, लोगों ने मेरा खूब स्वागत किया, मुझे नहीं रुकना क्योंकि भरूच जा रहा आशीर्वाद लेना, बीच में लोगों ने मुझे पत्थर मारा तो भी नहीं रुकना है, गाली नहीं देनी, भले आशीर्वाद नहीं लेनी गाली नहीं देनी, हमें भरूच जा, यही ऋषि मुनि कहते हैं जो आपका लक्ष्य है, आप एक बड़े डॉक्टर होना चाहते, एक इंजीनियर होना चाहते, मंत्री होना चाहते, महात्मा होना चाहते, मैं नहीं कहता क्या करूं क्या न करूं, लेकिन इतना कहता हूं अगर अच्छाई भी रोकती है तो आगे करो, बुराई अगर पीछे लाती है तो क्या करो, पीछे करो आगे। तो विषाद का मतलब आपके लक्ष्य में किसी भी तरह कोई चीज हर्डल पैदा करे, विघ्न पैदा करे, चाहे वो अच्छा देखना हो या कुछ और, चाहे वो अच्छा सुनना कुछ और, समझ कर उसका त्याग कर आगे बढ़ो, और जब परमात्मा में आसक्त हो जाओगे हमारे सब सारा जगत आ, मैं छोटी छोटी बात में आपकी आसक्ति नहीं रखना चाहता, आप 1 करोड़ का मकान बनाना चाहते हैं, अरे आत्मज्ञान प्राप्त होने पर पूरी दुनिया आती है, आप 2-4 बच्चों को जन्म देकर लायक बनाना चाहते हो उनको लायक बनाओ, लेकिन आप स्वयं परमात्मा तक पहुंचोगे तो सारा जगत सारा समाज लायक बन जाएगा आपको देखकर। हमने एक सर्वे किया प्रिय आपको, कुर गया जहां के करियप्पा थे, बिलियप्पा थे, सिमैया थे, जो मेरे टीम है वो सब जानते, हर घर में कोई कोई मिलिट्री का ऑफिसर, पहले करियप्पा बने उसको देखकर सब मिलिट्री में गए, कुछ ऐसी जगह है जहां एक शिक्षक बना तो 1000 शिक्षक है आसपास,